ऐसी कितनी है कि जिन्होंने 69 से लेकर तो 2017 तक की सारी अव्यक्त वाणियां एक बार पढ़ी है। बहुत कम, बहुत कम। आपको एक महाप्रोजेक्ट दे रहे हैं। कितने साल चाहिए? एक साल का। कौन सा प्रोजेक्ट? महाप्रोजेक्ट। एटलीस्ट एक रीडिंग हर एक की होनी चाहिए। एडमिशन लेट ली और एग्जाम आ गई और एग्जाम का पेपर देखकर हमने कहा ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है, तो टीचर क्या कहेगा? तुम लेट आए, तुमको वो पढ़ना था, तुम्हारे आने से पहले जो कुछ हुआ। तुम ये नहीं कह सकते ये कहां से आ गया, ऐसा भी होता है क्या, वो भी यज्ञ में ऐसा होता है? ये पेपर तो किसने सेट किया? पेपर ही गलत है, पेपर को दोष देना। 69 से 70s में जो भी मुड़ लिया है और 80s की जो भी मुड़ लिया है, उसमें जो साइकोलॉजी की बातें हैं डीप, उतनी विश्व की किसी भी मनोविज्ञान की किताब में नहीं है। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर बाबा ने नहीं दिया है। रोज की साकार मुरली है, संडे की अव्यक्त वाणियां इसके अतिरिक्त और सेवाएं है उसके अतिरिक्त। यदि कोई ये सोचे कि मुझे सारी अव्यक्त वाणियां एक बार पढ़नी है, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ और विशेष त्याग करना पड़ेगा। त्याग बहुत सारी बातों का करना पड़ेगा, जो जो टाइम व्यर्थ जा रहा है उन सबको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। एक प्रश्न ये भी आता है, पढ़ने से क्या होता है? हमने उनको भी देखा है जिन्होंने सब पढ़ा है और याद तो कुछ भी नहीं। हम वो बात आज नहीं कह रहे कि याद करना है, चिंतन करना है, वो दूसरी बात। जैसे किसी भी कॉलेज में एग्जाम से पहले एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग तो हो जानी चाहिए, फर्स्ट रीडिंग, फिर बाद में उसका चिंतन, उसका मनन, सेकेंड रीडिंग और एग्जाम के लिए तैयारी, उसके नोट्स, वो बात की बात है। पर एटलीस्ट वन रीडिंग सारी अव्यक्त वाणियों की, सारी। दो तीन दिन पहले एक भाई ओपीडी में आए थे, उन्होंने कहा 90 तक का चल रहा है, 90 तक का सब कुछ हो गया। कुछ दिन पहले एक भाई का मैसेज आया था, उसने कहा मुझे आज इतनी खुशी हो गई। हमने कहा क्यों? उसने कहा आज मेरा सारी मुरलियां पढ़ के हो गई, 69 से 2017 तक की। बड़ा काम है पर चालू करना है। जब भी टाइम मिले अपना एक व्यक्तिगत पर्सनल पुरुषार्थ ये रहेगा कि एक दिन में एक मुरली, संडे की छोड़कर और साकार मुरली छोड़कर और सब कुछ करते हुए एक मुरली पढ़नी है और एक दो मुख्य लाइन उसमें खींच लेना है वहां से। जैसे एक वाक्य आपको बता रहे हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य, एक मुरली में है जो बच्चे अपनी गलती से बार बार बीमार पड़ते हैं उनको बाप दादा ज्ञानी और योगी आत्मा नहीं कहते। कितना पावरफुल वाक्य है। जो बच्चे अपनी ही गलती से बार बार बीमार पड़ते हैं उनको बाप दादा ज्ञानी और योगी आत्मा नहीं कहते। जिसने अपने शरीर को ही चलाना नहीं सीखा वो विश्व के राज्य को क्या चलाएगा। ये दो लाइन है उस मुरली में। इस तरह अव्यक्त वाणियों में से खींच लेना है कुछ कुछ पावरफुल पॉइंट्स और वो पॉइंट अचानक काम आएंगे, शक्ति बन जाएंगे एकदम से। ज्ञान का एक वाक्य इतना बल दे सकता है, इतना कोई इतना एकदम से उदास हो गया है। और ऐसी आत्मा अचानक कोई बात उसे याद आ जाए तो फिर से नव शक्ति संचार हो जाएगी चेतना में। तो सबसे पहला ज्ञान पढ़ना, दूसरा याद करना, केवल पढ़ के नहीं अब आगे बढ़ना है, कुछ कुछ चीजें याद हो जाए, उसके बाद तीसरा रिवाइज करना, फिर से उसी मुरली पर जा रहे हैं 21 जनवरी 1969, 14 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए यज्ञ के लिए, ये यज्ञ कैसा चलेगा आगे, क्या क्या होगा, क्लास जैसी चलती है वैसी ही चलती रहेगी, पोस्ट जैसी मधुबन से जाती है वैसी ही जाती रहेगी, लिखा पढ़ी जो मधुबन से हो रही है वैसी होती रहेगी, बाप दादा जो मुरली सुनाते हैं वो मुरली होगी, संदेशियों द्वारा जो मुरली होती है उसमें मुरली का जादू नहीं, दीदी और दादी, दीदी निमित्त बनेगी कुमार का सहयोगी, मददगार होगी, इंस्ट्रक्शंस है सारे यज्ञ के लिए, ध्यान दीदार का पार्ट अब कम हो जाएगा, दीदी दादी जिसको निमित्त बनाएगी वही ध्यान दीदार में जाएगी, और ध्यान दीदार में टाइम वेस्ट नहीं करना। और उसमें एक इंस्ट्रक्शन थी कि अब तुमको क्या करना है, अब तुमको मुरलियां रिवाइज करनी है। एक प्रश्न उस मुरली में बाबा ने पूछा है, क्या तुम्हें कल की मुरली याद है, और बाबा ने खुद ही उत्तर दिया है। पहला प्रश्न है, क्या तुम्हें एक साल पहले की मुरली याद है, और बाबा ने खुद उत्तर दिया है, कल की भी याद नहीं होगी। और बाबा ने खुद आगे कहा है, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसी होती है कि बार बार रिवाइज करने के बाद भी बुद्धि में नहीं ठहरती, इसलिए अब तुमको सारी मुरलियां रिवाइज करनी है। 26 जून 1969 अव्यक्तवाणी। अब ज्ञान सुनाने का पाठ पूरा हुआ 69 में, अब तुमको रिवाइज करना है, ज्ञान पूरा हो चुका है, अब खाली रिवाइज करना है। तो सबसे पहले पढ़ना, फिर कुछ कुछ बातें याद रखना, तीसरा कुछ कुछ बातें रिवाइज करना, चौथा ज्ञान का चिंतन करना। और हम दूसरों को वही बता सकते हैं जो हमने सूक्ष्म में चिंतन किया है, और सर्वश्रेष्ठ चिंतन वो है जो अशरीरी अवस्था में किया जाए। एक होता है कि ये मुरली है और इस पर सुनाना है इसलिए हमने ये चिंतन किया, परंतु चिंतन ऐसा हो शरीर से बाहर निकलकर किया हुआ चिंतन, वो सोचना जो अब तक किसी ने नहीं सोचा होगा। और ऐसा चिंतन ही आत्मा में बल भरेगा। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है। लिख के रखना इस वाक्य को, केवल ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाएगा, अपनी घोट तो नशा चढ़े, गहराई में जाओ, एक एक पॉइंट को ले लो और सोचो ये क्यों कहा गया। आपको एक महा प्रोजेक्ट दे रहे, एटलीस्ट एक रीडिंग हरेक की होनी चाहिए, सारी अव्यक्तवाणियों की, सारी